તારીખ 4/5/1995 શ્રી પરમાગમસાર બોલ નંબર 236 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 620
4 મે 1995 રાતે પરમાગમસાર પર આદરણીય ભાઈ શ્રી પ્રવચન પરમાગમસાર પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી કે વચનામૃત વચનામૃત 236 ચાલતા હૈ 236 वचनामृत में कहते हैं समझ के द्वारा ज्ञान में जैसे जैसे भाव भाषण विकसित होता है यानी बढ़ता जाता है समझ के द्वारा ज्ञान में भाव भाषण किसका आत्मस्वरूप का आत्मस्वरूप का भाव भाषण ज्ञान में होता है और वो ज्ञान है प्रयोगात्मक ज्ञान है वो ज्ञान धारणा ज्ञान नहीं है वो ज्ञान परलक्ष्य ज्ञान भी नहीं है जो ज्ञान स्वलक्षी है और प्रयोगात्मक भूमिका में है प्रैक्टिकल साइड जिसको कहते हैं बहुभाग मुमुक्षु को तो अभी थियरी समझने में तकलीफ पड़ती है तो प्रैक्टिकल पर तो आए कहां से थियरी के विषय में विवाद में आ जाते हैं हमको ऐसा लगता है तो दूसरों को बोलते हैं हमको तो ऐसा लगता है इस बात से तो उतना तो समझण का विपर्यास नहीं होना चाहिए समझ का विपर्यास नहीं हो और समझ तो बराबर होए कि श्री गुरु क्या कहना चाहते हैं वो गुरु के अभिप्राय को तो बराबर समझे और उनके वचन के अर्थ घटन को भी बराबर करें दूसरे प्रकार से नहीं करें फिर वही समझ को परिणमन में लागू करें उसको कहते हैं प्रयोग समझ का सदुपयोग समझ का अमलीकरण एग्जीक्यूटिव स्टेज ऐसे प्रयोग में जैसे जैसे आत्म स्वभाव का भाव भाषण होता है यानी जैसा सिद्ध समान सिद्ध स्वरूपी आत्मपद है आत्मा जो आत्मा सो परमात्मा अप्पा सो परम अप्पा ऐसा लगने लगे भाषित होवे मतलब लगने लगे अंदर में उस वक्त ज्ञान की सामर्थ्य बढ़ती जाती है ज्ञान की शक्ति बढ़ती है सामर्थ्य बढ़ती है माने ज्ञान की शक्ति बढ़ती है ज्ञान की निर्मलता भी बढ़ती है और ज्ञान में योग्यता यानी यथार्थता भी बराबर आती है भले ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है लेकिन स्वरूप का भाव भाषण होने से यथार्थता आ जाती है वर्तमान परिणमन का तो अनुभव है और त्रिकाली आत्म स्वभाव का भाव भाषण हुआ तो द्रव पर्याय का ज्ञान हुआ, दोनों का ज्ञान हुआ। पहले द्रव्य स्वभाव से अनजाना था, अब द्रव्य स्वभाव का भाव वासन हुआ। और पर्याय तो इससे स्थूल है, स्वभाव से तो काफी स्थूल है, उसका तो अनुभव वर्तता है। तो दोनों को ज्ञान यथार्थ रूप में हुआ, यथार्थता यहाँ से आई। सम्यक्ता तो अनुभव से आएगी, लेकिन यथार्थता यहाँ से आई। समझ होना एक बात है और यथार्थता होना दूसरी बात है। वो यथार्थता जब आती है तब ज्ञान में निर्मलता भी आती है, यथार्थता भी आती है और ज्ञान की शक्ति भी बढ़ती है। शक्ति बढ़ती है तो उघाड़ बढ़ जाता है, ये बात यहाँ नहीं है। शक्ति बढ़ती है तो अपने स्वरूप को विषय करने की ताकत बढ़ती है, ताकत आती है। और बढ़ता हुआ ज्ञान सामर्थ्य द्वारा मोह शिथिल हो जाता है। अब क्या करने का काम है हमको? हमारा प्रयोजन मोह को मारने का है, सिर्फ ज्ञान बढ़ाने का हमारा प्रयोजन नहीं है। शास्त्र ज्ञान तो पढ़ाई करने से बढ़ सकता है, शास्त्र सुनने से भी बढ़ सकता है, लेकिन जिस ज्ञान के असर मोह पर पहुंचे और मोह शिथिल हो जाए, यानी मोह की शक्ति टूटे, उसमें भी दर्शन मोह, या मोह शब्द से क्या लेना है, दर्शन मोह। मोह का दो भेद है, दर्शन मोह और चारित्र मोह, दोनों पर असर आएगी। दर्शन मोह भी कमजोर हो जाएगा और चारित्र मोह में जो कषाय है वो कषाय की शक्ति कषाय रस में है, तो कषाय रस भी ठंडा हो जाएगा, कषाय रस भी पतला हो जाएगा। ऐसे मोह है वो शिथिल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। भाव भाषण पूर्वक ज्ञान में निर्मलता, योग्यता और शक्ति बढ़ती है। प्रयोग, समझ का प्रयोग। प्रयोग में अपनी समझ है उसको परिणमन में लागू करने की बात होती है। प्रयोग माने प्रैक्टिकल, टू अप्लाई द थियोरी इन प्रैक्टिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल की परिभाषा है। प्रयोग की परिभाषा क्या, डेफिनेशन क्या, कि हमारी जो समझ है वो हम समझ करके सीमित हो जाते हैं या संतुष्ट हो जाते हैं तो उसका कोई उपयोग नहीं होता। तो दूसरे लोग भी ऐसा कहते हैं कि ये आपने समझा उसका क्या फायदा है, आप तो वहां के वहां हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने कुछ भी समझा हो लेकिन इस समझ का सदुपयोग नहीं किया हो, प्रयोग नहीं किया हो, तो दूसरे को भी मालूम पड़ता है, जगतवासी जीव को भी स्थूल ज्ञान में भी मालूम पड़ता है कि आप लोगों की बातें हैं, आप बात करते हो, आपके परिणमन में वो चीज आई नहीं है। ऐसा दूसरे भी बता सकते हैं, क्योंकि वहां स्थूलता आ जाती है तो दूसरे को मालूम पड़ जाता है कि बात करता है लेकिन इसके परिणमन में इसका कोई असर है नहीं। तो हमारी जो समझ है वो स्वलक्ष्य अगर होगी तो हम समझ को हमारे परिणमन में लागू करने का प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, प्रयास करेंगे, तो ये प्रयोगात्मक भूमिका में भाव वासन आता है। समझ ज्ञान के आधार से
तो ज्ञान का विषय ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे तो पकड़ बढ़ती जाती है, भाव वासन बढ़ता जाता है।
ज्ञान दो तरह का है, एक परलक्ष्य ज्ञान और एक स्वलक्ष्य ज्ञान। तो स्वलक्ष्य ज्ञान बढ़ेगा तो वो ज्ञान प्रयोग की भूमिका में प्रवेश करेगा। परलक्ष्य ज्ञान है वो कितना भी बढ़ेगा, शास्त्र के शास्त्र कंठस्थ हो जाएंगे लेकिन उसमें कोई अपना उस समझ के प्रयोग अपने परिणमन में नहीं होगी तो भाव भाषण नहीं होगा। भाव भाषण होना माने क्या, के लगने लगे, फीलिंग पोजीशन में आए, थिंकिंग पोजीशन से आगे बढ़ करके फीलिंग पोजीशन में आए। हाँ, ये बहुत, ये भाव वासन के वही बात है, नहीं लगने लगे वहां तक भाव वासन नहीं है। जैसे श्री गुरु ने हमको समझाया कि हमारी आत्मा, तुम्हारी आत्मा, सबकी आत्मा जैसे सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में विराजमान है वैसे ही सबकी आत्मा है, जाति अपेक्षा से कोई भेद नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, वो कल्पना छोड़ देने की है। अनादि से सभी आत्माएं हैं और वर्तमान कल सभी आत्मा का परिणमन और अस्तित्व मौजूद है, इसलिए कोई छोटा बड़ा है वो बात तो है ही नहीं, आत्मा सब आत्मा ही है। लेकिन हमको क्या फील हो रहा है कि हम तो फलाने मनुष्य हैं, हम तो फलाने फलाने हैं, पुरुष है या स्त्री है या जो कुछ भी है, व्यापारी है या कुछ भी है, ये जो है हमारा कर्म जनित अवस्था है उसको ही अपने अपना स्वरूप मान करके जान करके स्वीकार कर लिया है, वो हमारी गलती है बड़ी। वास्तव में सबसे पहले हम एक आत्मा हैं और हमारे स्वरूप को नहीं समझने के कारण हमने हमारे विषय में ही हमने गलत धारणा कर ली है कि हम फलाने फलाने हो गए हैं। पशु पक्षी हुआ तो ऐसा मान लिया, मनुष्य हुआ तो ऐसा मान लिया, पर लेकिन वो तो कर्म का उद्देश्य हुआ है, वो एक अवस्था है जो कुछ काल में शुरू होती है विकृत अवस्था और कुछ काल में समाप्त हो जाएगी। ये मनुष्य पिणा है वो आयुष पर्यंत है, आयुष चालू हुआ वहां से मनुष्यपना हुए, आयुष समाप्त होने से, मनुष्य आयु समाप्त होने से मनुष्यपना भी समाप्त हो जाएगा। और जो जीवन में जैसे जिस प्रकार के कर्म बंधन किए हैं उसके फल भोगने के लिए नई अवस्था धारण कर लेगा। तो ऐसा जो चल रहा है उसको, उसमें दुख हो रहा है, ये दुख को छुड़ाने के लिए, जन्म मरण को छुड़ाने के लिए, जिसका जन्म मरण नहीं होता है ऐसा जो आत्मा का मूल स्वभाव, मूल स्वरूप, उसका ज्ञान करना जरूरी है। और वो ज्ञान क्या, कि भाव भाषण वाला ज्ञान सबसे पहले होता है। भाव भाषण कैसे आता है, जैसे जैसे मैंने कैसे प्रश्न तो ये उठना जरूरी है कि समझ के द्वारा ज्ञान में जैसे जैसे भाव भाषण बढ़ता है, जैसे जैसे मैंने कैसे कैसे, ये प्रश्न होना जरूरी है। तो हम हमारे ज्ञान को देखे, वर्तमान ज्ञान को देखे, तो वो ज्ञान निरंतर चालू रहता है कि नहीं रहता है, कि कभी ज्ञान बंद हो जाता है, कि ज्ञान कभी बंद होता, ज्ञान का निरंतर प्रवाह, ज्ञान का निरंतर प्रवाह जिस खानी में से आ रहा है उसमें कितना ज्ञान भरा होगा तो वो निरंतर बहता रहता है। ये वो जैसे का पेट्रोल का कुआं में से पेट्रोल निकलता है कि नहीं, क्रूड निकलता है, गैस निकलता है, निरंतर बाहर आता है, वो उससे पता चलता है कि अंदर में डिपॉजिट कितना है। बोर की साइज और निकलने का जो फोर्स, उस पर से उस विषय का जो तजग्न होता है वो अंदर में गए बिना उसके डिपॉजिट को नाप करता है कि इतना क्यूबिक घन मीटर ये पदार्थ अंदर में पड़ा है। ये तो बाहर में है, जमीन में है, ये तो हमारे अपने आप में है। ज्ञान जिस कुआं में से निकलता है उसमें निरंतर जो निकलता है उसकी बाहर आने की जो सातत्यता है, सततपना है, इससे अंदर में अनंत ज्ञान भरा है ऐसा भाव भाषण हो सकता है। क्या होता है? भाव भाषण होता है। लेकिन अपने सातत्य को समझे तो, ज्ञान के सातत्य को समझे तो और इसका अनुभव करे तो, उस पर ध्यान नहीं है तो आत्मा समझ में नहीं आता, भाव भाषण में नहीं आता। दूसरा कि यह ज्ञान अपने में होने वाले रागादिक मलिन परिणाम के साथ वर्तता है वर्तमान में, और वो रागादि मलिनता प्रचुर होने से जीव निगोद में चला जाता है तो वहां प्रचुर मलिन दशा होती है। कितनी? प्रचुर मलिन दशा होती है। अनंत काल तक अनादि से वर्तमान जो काल बीता वो अनंत काल बीता, अनंत काल राग के बाजू में इतनी मलिन परिणाम वाली परिस्थिति चालू रही तो ज्ञान मेला हुआ कि नहीं हुआ?
नहीं हुआ।
कि ज्ञान में मलिनता का प्रवेश नहीं हुआ। जैसे हजारों स्वाद को अनुभव करने वाली जीभ हजारों स्वाद को अनुभव कर चुकी है, हमारे जीभ पर कौन सा स्वाद है वर्तमान में? एक भी स्वाद नहीं है। क्योंकि स्वाद रहित, स्वाद लेकर के भी, स्वाद को जान करके भी स्वाद रहित रहना इसका स्वभाव है। किसी भी स्वाद से लेपायमान होने का जीव का स्वभाव नहीं है। वैसे अनंत कषाय और अनंत ज्ञेय का अनुभव करने पर भी ज्ञान कोरा का कोरा रहता है, ज्ञान ज्ञान मात्र ही रहता है, ज्ञान में किसी का प्रवेश होता नहीं, ज्ञान लेपायमान होता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? कि ज्ञान अपने स्वरूप से ही शुद्ध स्वरूप है। क्या है? ये आत्मा का शुद्ध स्वरूप यहां से भाव भाषण में आता है। जो शुद्धात्मा है ना, आत्मा का मूल स्वरूप परमात्म तत्व है और परमात्म तत्व है वो शुद्धात्म तत्व है, शुद्धात्म तत्व है वही परमात्म तत्व है। तो उसकी शुद्धता कहां से नजर आती है? कि ज्ञान की निर्मलता से, ज्ञान की शुद्धता से, कि ज्ञान शुद्ध रहता है। ज्ञान कभी लिपायमान होता ही नहीं, निर्लेप रहने का इसका स्वरूप है। इसका हम अनुभव करें, ज्ञान तो हम खुद ही ज्ञान स्वरूप है, तो इसका हम अनुभव करें अपने आप का, तो भाव भाषण होगा। ये भाव भाषण होने में दो बात ज्ञान से नजर में आती है, ज्ञान की शुद्धता और एक ज्ञान की अनंतता। अब हमारा प्रयोजन सुख का है, ज्ञान का नहीं है क्या? हमें सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए, ये सभी जीव का प्रयोजन है। हमारा मैंने सभी जीव का यही प्रयोजन है। तो कषाय में दुख है, क्या है? राग द्वेष मोह आदि अनेक प्रकार के विकारी परिणाम है, विभाव परिणाम है, उसमें आकुलता है और उसमें दुख है। और ज्ञान अकषाय स्वरूप होने से ज्ञान का रूप सुख है। कल रात्रि चर्चा में चला था कि ज्ञान का रूप आनंद है, ज्ञान सुख रूप है, ज्ञान आनंद रूप है। तो ज्ञान का अपना अनुभव जो है, ज्ञान में अपने आप का अपने में जो अनुभव है, उसमें कषाय का अनुभव तो होता नहीं, वो कषाय से भिन्न वर्तता है, तो ज्ञान सुख रूप मालूम पड़ेगा। यहां तो सुख का सैंपल ही मालूम पड़ेगा भाव भाषण में तो, लेकिन सैंपल पर से पूरी चीज का पता निकलता है। हम कोई चीज खरीदने को जाता है तो सैंपल देखते हैं, एक गुड़ का बड़ा ढेला होता है 30 किलो का, थोड़ी चख लेते हैं, सैंपल चख लेते हैं और पूरी चीज खरीद लेते हैं। ऐसे यहां सुख का सैंपल दिखने में आता है कि जैसे अनंत ज्ञान मेरे में भरा है, वैसे अनंत सुख भी मेरे में ही भरा है। जब अनंत सुख हमारे में है ऐसा हमको विश्वास आता है, भाव भाषण में क्या होता है? विश्वास पैदा होता है। तो हमारी जो सुख लेने की अपेक्षा वृत्ति है, सुख प्राप्त करने की जो अपेक्षा वृत्ति है, वो जोर से हमारे स्वरूप में जाने के लिए जोर से उठेगी, उत्पन्न हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं कि पुरुषार्थ, आत्मा का पुरुषार्थ, आत्मिक पुरुषार्थ कहते हैं। एक दूसरी बात साथ में ले ले स्पष्ट करने के लिए कि जगत में 5 इंद्रिय के विषयभूत जितने भी पदार्थ हैं वो जड़ परमाणु से बने हुए हैं। कोई भी खुराक है, खाने की चीज, तो जड़ परमाणु से बनी हुई है। कोई भी सुनने का सुस्वर है, वो भी परमाणु का बना हुआ है। वाइब्रेशन, आवाज का जो वाइब्रेशन है वो परमाणु है। गंध आती है, वो भी परमाणु का अवस्था है। आंख से हम वर्ण को देखते हैं, रूप को देखते हैं, कलर को देखते हैं, वो भी परमाणु की अवस्था है। और ठंडा गर्म, कठोर और ऐसे स्मूद, हाँ, खरबचड़ा और सुवाड़ा, जो भी पदार्थ है वो भी परमाणु से बना हुआ है। ये सब परमाणु की अवस्था में, हम किसी अवस्था में दुख का अनुभव करते हैं, किसी अवस्था में सुख का अनुभव करते हैं, जबकि जड़ परमाणु में सुख दुख कभी हो ही नहीं सकता। फिर भी हमारा काल्पनिक निश्चय है कि हमको ये रंग पसंद है, हमको ये स्वाद पसंद है, हमको ये सुगंध पसंद है, तो उसमें हमको सुख का अनुभव होता है, जो वास्तव में सुख नहीं है, सुख का आभास है। सुख नहीं है किंतु सुख का आभास है, लेकिन गलत निश्चय, काल्पनिक निश्चय से हमको वहां सही सुख का अनुभव होता है। जहां सुख नहीं है वहां सुख का अनुभव होना, ये हमारी भूल है। लेकिन भूल भूल रूप से मालूम नहीं पड़ती है तो हम इसके पीछे दौड़ लगाते हैं। हाँ, खट्टी
आती है।
हाँ,
आम खट्टा आता है
तो क्या होता है? दुख लगता है। और मीठी होती है तो सुख लगता है। अब मेरा प्रश्न है कि खट्टी में दुख कहाँ है और मीठापन में सुख कहाँ है, वो बता दीजिए। खट्टा खट्टा जरूर है, मीठा मीठा जरूर है, उसमें दो मत नहीं है हमका। लेकिन खट्टापन में दुख और मीठापन में सुख, वो बात कल्पना की है कि वास्तविकता की है, वो आप बता दीजिए। आप कहेंगे कि कल्पना हो वास्तविकता हो, हमको तो सुख लगता है मीठापन में, मीठी कैरी में हमको सुख लगता है, हमारा अनुभव बोलता है। तो हम कहते हैं कि आपको जितना सुख लगता है उस सुख को डबल करो। हाँ, आपको एक कटोरा भर के आम रस खाने में सुख लगा, दो कटोरा खाइए, डबल सुख होगा कि नहीं होगा? और फिर 10 कटोरा भी खाइए, 10 गुना सुख होगा कि नहीं होगा? और फिर 100 कटोरा खाइए, 100 गुना सुख होगा कि नहीं होगा? कि आपको हाथ जोड़ना पड़ेगा, मेहरबानी करके अभी खिलाना बंद करो, हमको नहीं खाना है। अरे अरे चलता है ऐसा, बहुत अच्छा है, लो और लो और लो। नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब, अब तो वॉमिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉमिट हो जाएगा। तो ये सुख पश्चात सुखते दुख नहीं, कृपालुदेव श्रीमद राजचंद्र जी ने क्या सिद्धांत बताया कि जिसके पश्चात दुख हो उसको सुख मानना ये जीव की बड़ी भूल है, गलती है, ये भ्रमणा है। हम इतने बुद्धिमान होते हुए भी सरासर भूल करते हैं कि जहां सुख नहीं है वहां सुख मान लेते हैं और कि इस किस के पीछे दौड़ लगाते हैं। हाँ ठीक है, तो फिर इसलिए नहीं मिटेगी क्या?
नहीं।
तो कहने का अभिप्राय क्या है आपका?
गलती निकालने का ही
है। अनंत काल से गलती चालू है, लेकिन अज्ञान अंधकार के कारण से वो गलती है। अंधकार इस कमरे में 1000 साल का हो सकता है, हम इधर एक मोमबत्ती भी जला, एक कैंडल भी जला दें, 1000 साल का अंधकार जाने में कितनी देर लगती है? एक सेकंड में। लाइट हुआ कि कितना भी पुराना अंधकार चला गया। ऐसे हमारी अज्ञान की भूल, अंधकार की भूल, अज्ञान को अंधकार की उपमा देते हैं। कितने भी पुराने हो इससे क्या मतलब है? नाशे ज्ञान प्रकाश, अंधकार अज्ञान सम नाशे ज्ञान प्रकाश। ज्ञान का प्रकाश होते ही कितनी भी पुरानी भूल हो निकल जाती है। आज का जो जमाना है ना, वो मटेरियलिज्म का है। क्या मटेरियलिज्म का जमाना बोला जाता है ना? तो हम मटेरियलिस्टिक पीपल जो है उनको ये पूछना चाहते हैं कि आपने अपने सुख को कैसे मटेरियलाइज किया। जो सुख आम खाते खाते सुख लगता था वो दुख में परिवर्तन क्यों हो गया? ये सुख तो बढ़ता जाने चाहिए था, क्यों ये दुख रूप हो गया? इसलिए आपने अपने सुख को मटेरियलाइज किया नहीं है। मटेरियलाइज क्या करना मतलब क्या है कि उसकी वास्तविकता क्या है, सुख की वास्तविकता क्या है? सुख कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ का गुण है, या कोई पदार्थ की अवस्था है? जगत में कोई भी चीज होती है वो तीन में से बाहर नहीं होती है, बता दीजिए आप हो गए तो। कोई भी वस्तु है या कोई भी भाव है या कोई भी गुण है, तीन से बाहर कोई चौथी भी चीज हो सकती नहीं है। तो सुख क्या है? सुख कोई पदार्थ है, सुख कोई पदार्थ का गुण है, या सुख कोई पदार्थ की अवस्था है? बस ये बात वैज्ञानिक तौर से हमको समझनी चाहिए, धार्मिक अंधश्रद्धा से हमको नहीं समझना चाहिए। हम अंधश्रद्धा में मानने वाले, ब्लाइंड फेथ वाले नहीं है। ये हमारा प्रयोजन है। तो आत्मा जैसे ज्ञान स्वभावी है, वैसे ही आत्मा सुख स्वभावी है। ऐसे ऐसा अनंत स्वभाव आत्मा में भरा है, लेकिन ज्ञान और सुख ये मुख्य स्वभाव है इसका। और ज्ञान के माध्यम से सुख को समझ सकते हैं, क्योंकि समझ करने का अधिकार ज्ञान का है, सुख का नहीं है। समझने का रोल, समझने का पार्ट किसका है कि ज्ञान का है? तो ज्ञान का माध्यम से हम सुख को समझ सकते हैं बराबर, या भोग सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो हमारे ज्ञान के परिणमन से, ज्ञान के सातत्य से, ज्ञान की निर्लयता से, और ज्ञान में रहा हुआ कषाय का अभाव, इससे हम सुख को भी भाव भाषण में ले सकते हैं। भले ही अग्नि के एक चिंगारी में अग्नि का परिमाण, उसका परिमाण कम दिखने में आता है, वॉल्यूम कम दिखने में आता है, लेकिन शक्ति कितनी? एक चिंगारी में शक्ति कितनी कि एक चिंगारी में सारे जगत को जलाने की शक्ति है? कितनी आग लगे? जितने भी जलने योग्य पदार्थ है सब जल सकते हैं, चिंगारी एक ही चाहिए। वैसे ज्ञान की चिंगारी है हमारे पास। क्या है? ज्ञान की चिंगारी है, इससे हमें ज्ञान शक्ति को पकड़ना है, चिंगारी को नहीं पकड़ना है। कि हमारे तो इतना ही ज्ञान है पंकज भाई, हमारे पास तो खंड खंड ज्ञान है ना, उतना नहीं लेना है। हमारे ज्ञानोपयोग में ऐसे ज्ञान शक्ति का हमें दर्शन करना है। ये एक वचनामृत है गुरुदेव का, आप देखिए पीछे पेज नंबर 4 नीचे में 710 नंबर का वचनामृत है, मिला 710 नंबर। ज्ञान द्वार में स्वरूप शक्ति को जानना है। क्या लिखा है? ये जो ज्ञान का व्यापार चल रहा है, ज्ञान का जो परिणमन चल रहा है, उपयोग वर्तन करता है, वो ज्ञान का द्वार है। उसमें हमको खंड खंड ज्ञान को नहीं देखना है, वहां ही स्वरूप शक्ति है, ज्ञान शक्ति खुली है, वहां ज्ञान के परिणमन में ज्ञान स्वभाव खुला है। स्वभाव कहो शक्ति कहो एक ही बात है। इसलिए ज्ञान लक्षण यानी सैंपल व लक्ष्य रूप आत्मा मैंने पूरा पदार्थ अपने ज्ञान में भाषित होते हैं। देखो यहाँ भाव भाषण की बात चली 710 में भी गुरुदेव ने भाव भाषण की बात बहुत जगह किया है। आश्चर्य की बात वो है कि गुरुदेव उमराला में सात चौपड़ी पढ़े थे। सात चौपड़ी मैंने सेवन स्टैंडर्ड प्राथमिक स्कूल का अभ्यास समाप्त हो जाता था, फिर भी गुरुदेव का आत्मा का वैज्ञानिक ज्ञान बहुत था। वैज्ञानिक पद्धति से वो प्रवचन करते थे। सोनगढ़ में छोटे मोटे सब जाओ, गुरुदेव के जमाने में सब द्रव्यगुण पर्याय की चर्चा करते थे। द्रव्यगुण पर्याय मैंने पदार्थ का साइंस, कि आत्मा कैसा पदार्थ है, इसके गुण धर्म मैंने प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टर्स क्या क्या है, और इनकी सुख दुख की अवस्था, ज्ञान अज्ञान की अवस्था, मिथ्या श्रद्धा सम्यक श्रद्धा की अवस्था कैसे कैसे होती है, इनकी चर्चा होते थे वैज्ञानिक तौर से। गुरुदेव उतना साइंस नहीं पढ़े थे, लेकिन अंदर से अनुभव में से वो विज्ञान समझते थे बराबर, कि आत्मा कैसा पदार्थ है। यहाँ भी भाव भाषण का बात किया
है, टूट जाता है उसको स्वभाव नहीं माना जाता है, टूट जाता है
तो खंड खंड पना वो स्वभाव नहीं है। इसलिए हमने कहा कि ज्ञान का सातत्य को देखो। फिर से ज्ञान एक अवस्था पूरी होती है, दूसरी अवस्था पैदा होती है, तो एक अवस्था पूरी होकर के दूसरी अवस्था होती है, उसमें एक अवस्था वो दूसरी अवस्था नहीं है, ठीक है। फिर भी सातत्य क्यों चालू रहता है? नग 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 रूप से अन्वय रूप से चालू रहता है, वहां खंड खंड पना नहीं है। खंड खंड पना तो एक एक अवस्था में है, लेकिन अवस्था पर से हमको अवस्थाई पदार्थ पर चले जाना है, शक्ति को पकड़ना है। देखो हमारे में ये समझने की शक्ति है, एक चिंगारी को हम रुई के गोडाउन के पास नहीं रखेंगे। ये जो कपड़े की मिल होती है ना, वहाँ रुई के गोडाउन बड़े बड़े होते हैं, वहाँ बोर्ड लगाया जाता है, नो नेकेड लाइट शुड बी, हाँ खुली अग्नि 100 मीटर के अगल बगल में नहीं होनी चाहिए, तारों 100 मीटर के अंदर में कोई जलती हुई अग्नि नहीं, कोई बीड़ी धूम्रपान नहीं कर सकते वहाँ, क्योंकि रुई को आग लगे जाती है बहुत तेजी से। ऐसे पेट्रोल होता है, वहाँ भी बोर्ड लगाया जाता है, तो वो भी जल्दी पकड़ता है आपको। तो एक चिंगारी में हम चिंगारी को नहीं देखते, कितनी शक्ति को देखते हैं कि सारे गोडाउन के गोडाउन जल जाएंगे रुई के, उतनी शक्ति को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? वो तो प्रगट अवस्था पर से शक्ति को देखा है। अरे ए प्रगट अवस्था पर से भी शक्ति को हम भाव भाषण में लेते हैं, किस तरह से? कि हम गए स्टेशन पर और वहां अनाउंसमेंट हो गया कि स्टेशन में कहीं भी बम रखा है, कहीं भी बम रखा गया है, इस मकान को खाली करो, सब भाग भग के चले जाओ। तो हमने हमारे जीवन में कभी बम्बार्डिंग देखा भी नहीं है, फूटा हुआ बम भी देखा नहीं हो, फिर भी, और बम कहाँ पड़ा है उसकी तलाश भी हमने नहीं की, हम क्यों भगने लगे हा? कि बम की शक्ति के अंदर हमको विश्वास आ गया कि ये फटेगा तो टुकड़ा टुकड़ा शरीर का हो जाएगा। तो शक्ति का विश्वास हम बिना देखे भी करते हैं। शक्ति का विश्वास करने के हमारे में जो योग्यता है, ये योग्यता का उपयोग कहां तक होता है? अच्छा, कोई हमको बता दे कि वहां फुटबॉल जैसा कोई एक चीज पड़ा है, ये बम है, तो हम ऐसा आर्ग्यूमेंट करते कभी कि फूटा तो नहीं, ये फूटा तो हम माने, वरना कैसे मानेंगे? हम भग जाएंगे। हमको मालूम पड़ा कि वहां कुछ पड़ा है तो हम बिना फूटे भी भग जाएंगे। तो यहां तो ज्ञान की अवस्था मौजूद है, प्रकट है, लेकिन हमारा ध्यान खंड खंड पर है, अखंड पर नहीं है, यही तकलीफ है। हमने सीखा अवश्य कि ज्ञान के पर्याय खंड खंड होती है, लेकिन हमको वो भी सीखना जरूरी है कि जहां खंड खंड ज्ञान है वहां अखंड स्वभाव भी खुला पड़ा है। जब दोनों बात साथ में है तो हम एक को क्यों देखते हैं, दूसरे को क्यों नहीं देखते हैं, ये हमारा प्रश्न है। जानने वाला कोई पदार्थ है, वो अखंड है। खंड खंड ज्ञान को जानने वाला खंड खंड नहीं है, टुकड़े टुकड़े से जानते हैं, कभी इसको जाना कभी इसको जाना, खंड खंड मैंने टुकड़ा। कि जब रूप को जानते हैं तो उस वक्त गंध को नहीं जानते, गंध को जानते उस वक्त स्वाद को नहीं जानते, एक साथ दो को नहीं जान सकते। हमको एक साथ जानने का लोभ अवश्य होता है, जैसे शादी वगैरह में खाना खाने को जाते हैं ना, हाँ, तो वहाँ अच्छे अच्छे भोजन तो मिलता है, साथ साथ संगीत भी सुनने का मिलता है, साथ साथ डेकोरेशन भी दिखने को मिलता है, और वहाँ अत्तर फुवारा सेंट भी, सुगंध भी वहाँ लेने में आती है, और वहाँ एयर कंडीशन होने से शीत स्पर्श का भी अनुभव होता है, तो पांचों इंद्रिय का विषय एक जगह हमको मिलता है। लेकिन हमारी शक्ति खंड खंड ज्ञान में पांचों को ग्रहण करने की, एक साथ ग्रहण करने की नहीं है। जब हम खाते हैं तो सुनना बंद हो जाता है, सुनते हैं तो स्वाद लेना बंद हो जाता है, सुगंध लेते हैं तो दूसरा चार एब्सेंट हो जाता है, एक का प्रेजेंट में दूसरा चार एब्सेंट हो जाता है। ये हमारी परिस्थिति इतनी ज्ञान की कमजोर है, लेकिन हम स्वरूप से ऐसे खंड खंड वाले ज्ञान, खंड खंड ज्ञान वाले नहीं है, हम स्वरूप से तो अखंड ज्ञान वाले हैं। लेकिन वो अखंडता हमको प्रकट करनी चाहिए, वो प्रकट करने की विधि को, ये प्रकट करने की कार्य पद्धति को साधना कहते हैं या आराधना कहते हैं, वो शास्त्रीय परिभाषा है। वो कार्य करने की एक पद्धति है जिससे हम आत्मा की सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं, और आत्मा में से आत्मा की सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। ऐसी पद्धति को धर्म बोला जाता है। धर्म कोई रूढ़िवादिता नहीं है, कोई रिवाज नहीं है, धर्म कोई माला फेरना धर्म नहीं है, शास्त्र पढ़ना भी धर्म नहीं है, जिन मंदिर में जाना भी धर्म नहीं है, और उपवास करना भी धर्म नहीं है, और दान देना भी धर्म नहीं है। खंड खंड ज्ञान साधन ऐसे नहीं लेकर के ज्ञान साधन और आत्मा ज्ञान स्वभावी आत्मा साध्य ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि सातत्यता से हमको आत्मा का ग्रहण करना है, खंड खंडता से नहीं ग्रहण करना है। चलो, आपका प्रश्न बहुत अच्छा आया। ज्ञान का रूप थोड़ा विचित्र है, एक दूसरा दृष्टांत मैं देता हूं कि ज्ञान ज्ञेयाकार भी है और ज्ञानाकार भी है, लेकिन ज्ञेयाकार ज्ञान वो ज्ञान का स्वरूप नहीं है। ज्ञेयाकार ज्ञान मैंने अनेकाकार ज्ञान, और ज्ञानाकार ज्ञान मैंने एकाकार ज्ञान। तो अनेकाकारता वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, एकाकार वो आत्मा का स्वरूप है। ऐसे खंड खंड ज्ञान है वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, उसमें जो सातत्य है वो अखंडपणा है, वो आत्मा का स्वरूप है। खंड खंडपणा वो ज्ञान का विभाव है, विभाव साधन और स्वभाव साध्य ऐसा नहीं बनता। इसलिए ज्ञेयाकार ज्ञान को तिरुभूत करके ज्ञानाकार ज्ञान को आविर्भूत करने का उपदेश है हमारे शास्त्र में, यही कारण से है। समय सार के पंदर गाथा।
ये प्रयोग कौन सी भूमिका में आया बाजी कर सकता है?
मुमुक्षु जीव जिसको पूर्णता का लक्ष्य हो गया हो, क्योंकि इसके बिना तो शुरुआत नहीं है, ये तो गुरुदेव का अपर सिद्धांत है। वो जीव अपने परिणामों की अवलोकन करता करते ज्ञान का अवलोकन, ज्ञान स्वयं का अवलोकन करेगा, तब उसको ज्ञान की निर्लिप्तता सातत्यता और ज्ञान की शक्ति का दर्शन हो सकता है, इसके पहले नहीं हो सकता है।
ऐसा प्रयोग कुछ घंटों में हो सकता है?
हाँ, हो सकता है,
वर्षों लगता है। उसका कारण,
इसका कारण ये है कि अपने प्रयोजन की मुख्यता नहीं की। किसी को ये बात घंटों में साध्य होती है, और किसी को बहुत साल तक वो बात साध्य नहीं होती है। प्रश्न ये, इसका कारण क्या? कि आत्मकल्याण की तीव्र भावना, आत्महित की तीव्र भावना, जितनी भावना तीव्र उतनी पात्रता। तो पात्रता नहीं होने से देर लगती है, और पात्रता आने से देर लगती नहीं है।
पात्रता तो पूर्णता के लक्ष्य में आती है,
पूर्णता के लक्ष्य में पात्रता आती है तो फिर ज्यादा देर नहीं लगती है। हाँ, छह वर्ष लगा तो वहाँ पात्रता बढ़ाने में थोड़ा देर लग गया। ऐसा है कि सभी जीव को अनेक प्रकार के विपरीत संस्कार भी है। विपरीत संस्कार मैंने विपरीत समझ और विपरीत श्रद्धा। ऐसा रहता है, ऐसा रह सकता है।
प्रतिबंध नहीं, विपर्यास।
हाँ, ये विपर्यास है।
किसका विपर्यास? ज्ञान का,
ज्ञान का और श्रद्धा का, दोनों का होता है। ज्ञान का भी है, श्रद्धा का भी है। बात प्रति है, बहुत ऐसी होती। वो क्या है कि उनके जो संग था उसमें कुछ ईश्वरकर्ता की मान्यता वाला भी थोड़ा विषय अपने परिणमन में था।
तो खाली मात्र उदाहरण है, अपने को हमारे अपने बारे में समझना, अपनी भूमिका के बारे में समझना। कौन सी भूमिका में आयवाजी करता था? आपने कहा कि भूमिका के लक्ष्य के बाद वाला उतरा सकता है, तो भूमिका के लक्ष्य में आया हुआ जीव को भी समय का फर्क लगता है, होता है। उसका कारण
भावना की जो डिग्री है वो कमी बैसे होती है। हाँ, प्रश्न वो रिपीट करते हैं कि किसी जीव को पूर्णता का लक्ष्य हुआ और फिर भी उनको स्वरूप का भाव भाषण होने में देर लगती है।
किसी को घंटों लगता है, किसी को महीनों, किसी को सालों।
हाँ, तो उसमें उसमें क्या होता है कि बीच में ज्ञानी सत्पुरुष का योग चाहिए, और वो योग एक विशिष्ट प्रकार के पुण्योदय से बनता है। जिसका पुण्य के साथ भी संबंध है और पात्रता के साथ भी संबंध है। ऐसा योग बनने में कभी किसी को देर लगती है तो भी टाइम लग जाता है। आधार नहीं है,
जड़ का प्रतिबंध
नहीं, जड़ नहीं है। सत्पुरुष का योग होना
पुण्य का, अपने का पुण्य तो जड़ है,
पुण्य जड़ है, लेकिन सत्पुरुष का योग होना
वो तो चेतन है,
वो जड़ है क्या?
वो चेतन है।
वो तो जड़ नहीं है ना। ऐसा ये योग होना अनिवार्य है क्या? किसी आत्मा को ऐसा हो सकता है कि हमको परिपूर्ण शुद्ध होना है, परिपूर्ण सुखी होना है, हमको जन्म मरण नहीं चाहिए, ये बात आ सकती है। लेकिन बाद में भाव भाषण आने के पहले सत्पुरुष की पहचान होनी जरूरी है, और ये प्रत्यक्ष योग बिना किसी की पहचान हो नहीं सकती, तो उसमें समय लगने का संभावना है, समय लग सकता है उसमें। ये भी हुआ, किसी जीव को ऐसा भी होता है, किसी जीव को ऐसा भी होता है। तो ऐसा जो किसी का उदाहरण ले तो उसको पर्टिकुलर केस में उसकी क्या परिस्थिति है उसके सब पहलू हमको विचार में लेना जरूरी है, और खास करके हमको तो हमारे के विषय में देखना है कि हमारे में क्या गड़बड़ रही है। हम तो पूर्णता के लक्ष्य में आए नहीं, और आगे की बात समझने की हम कोशिश करते हैं। पहले स्टैंडर्ड में हम फेल हैं, और सातवें या बारहवें स्टैंडर्ड में क्या होता है, प्रॉब्लम कैसा होता है, इसका आंसर कैसा होता है, इसकी चर्चा करने हम लग जाते हैं। चर्चा तो हम शुक्ल ध्यान तक की कर लेते हैं, प्रथम वितर्क विचार शुक्ल ध्यान कैसा होता है, है? केवल ज्ञान कैसा होता है।
आज का जो विषय चला तो कौन इस भूमिका में आए हुए जीव,
तो हमने स्पष्ट कर दिया कि जिसने पूर्णता का लक्ष्य किया हो, जिसने सत्पुरुष की पहचान किया हो, वो स्वरूप के भाव भाषण में आकर के स्वरूप की पहचान कर सकता है, इसके बिना कोई कर सकता
नहीं है।
निकल जाती है अभिप्राय की भूल, निकल जाती है, लेकिन क्षोभसम की भूल कभी कभी कोई रह जाती है। अभिप्राय की भूल निकल जाती है, क्षोभसम की भूल रह जाना संभव है, ऐसा बनता है कभी, वो भी निकल जाएगी। पात्रता के वश वो भी निकल जाएगी। पात्रता ये जिसमें बलवान चीज है कि छोटी मोटी भूल रह जाती है वो निकल जाती है। हमको तो हमारे में ही देखना है कि हमारा प्रयोजन में हम कहाँ फेल होते हैं, हमारे में कौन सा ऐसा दोष है कि जिस कारण से हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमको पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते एक साल हुई, दो साल हुई, पांच साल हुई, सात साल हुई, हम आगे क्यों नहीं बढ़े? वास्तव में कहीं न कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं। ये बात हमको अपने में अंतर खोज करके जांच तलाश कर लेनी चाहिए।
अगर जैसे इस तरह की बात को समझ देते हैं कि दुनिया के लक्ष्य के बाद भी किसी प्रकार का विपर्यास रह जाता है, तो उस काल में किस तरह से जीव स्वच्छंद का पोषण कर सकता है?
तो क्या है, हमने समझ लिया, हमको मालूम पड़ गया, हम जानते हैं,
पहले दुर्गुण प्रयास समझ लिया था,
ये बात आगे आ जाएगी। हम जानते हैं, हम समझते हैं, हमको मालूम है, हमने सब पढ़ा है, सुना है, ये गड़बड़ हो जाती है तो स्वच्छंद हो जाएगा।
इस चीज में
ये ऐसे बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है और बहुत सावधानी से चलने की जरूरत है, और व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ना है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ा भी नहीं जाता। जो इसका विधि का क्रम है वो विधि क्रमात हम आगे बढ़ सकते हैं। आटा में पानी डाल दिया तो रोटी नहीं बनती है, उसका पिंड बराबर गूंद करके बनाना पड़ेगा, फिर उसको बेलन से रोटी कच्ची बनानी पड़ेगी, फिर पक्की रोटी खाने लायक होगी। आटा में पानी डाल देने से कोई रोटी नहीं मिल जाती। ऐसे बात कर लिया, सुन लिया, पढ़ लिया इसलिए कोई काम हो जाता है, ऐसा नहीं है। समझने के बाद तो कार्य करने का प्रारंभ होता है, एग्जीक्यूटिव स्टेज तो वहां से शुरू होता है। और हम गलती वो करते हैं कि हमने समझ लिया इसलिए हमको ज्ञान हो गया, ये ज्ञान नहीं है, एक नया प्रकार का अज्ञान है, विशिष्ट प्रकार का वो अज्ञान है, और अज्ञान को हमने ज्ञान मान लिया है, तो बड़ी गलती नहीं हुई, नहीं बड़ी गलती हो गई। नहीं वो तो क्या हमको पक्ष करना है क्या? अगर हम पक्ष करते हैं हमारे दोष का तो ये स्वच्छंद है, और वही बात से हम हमारे दोष निकलने की प्रेरणा लेते हैं तो स्वच्छंद नहीं है। जो बचाव का आर्ग्यूमेंट है वो 100% स्वच्छंद ही है। क्यों? कि ज्ञानी भी अपने दोष का बचाव नहीं करते हैं, ज्ञानी भी अपने दोष का बचाव, उसको मालूम पड़ता है गुण को गुण जानते हैं, दोष को दोष जानते हैं। दोष है वो कभी गुण नहीं हो सकता, गुण है कभी दोष नहीं हो सकता, क्योंकि एक में लाभ होता है एक में नुकसान होता है, लाभ में नुकसान नहीं होता, नुकसान में कभी लाभ नहीं हो सकता। यहां पर गुरुदेव ने मोह को शिथिल होने की विधि बताई है। मोह पहले शिथिल होता है फिर इसका अभाव होता है, ये इसका क्रम है। सीधा मोह का नाश नहीं होता है, पहले मोह शिथिल पड़ता है, उसकी ताकत टूट जाती है। तो ज्ञान सामर्थ्य ऐसे भाव भाषण से बढ़ने से मोह शिथिल होता है, और जब ज्ञान सम्यक रूप से परिणमित होता है यानी अनुभव के काल में मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हुआ तब मोह का समूह नाश को प्राप्त हो जाता है। उस वक्त मोह का दर्शन मोह का अभाव होता है, चारित्र मोह का अभाव नहीं होता, दर्शन मोह का अभाव होता है। यहाँ चर्चा दर्शन मोह की चलती है। अतः ज्ञान से ही आत्मा की सिद्धि है, सिद्धि मैंने प्राप्ति, जिसको आत्मा की सुख शांति की प्राप्त करना हो तो ज्ञान ही साधन है और कोई साधन। ज्ञान के अतिरिक्त मैंने ज्ञान को छोड़ करके आत्म सिद्धि का मैंने आत्म प्राप्ति का अन्य कोई साधन नहीं है। तो साधन के विषय में हमें कभी दूसरा साधन को ग्रहण करना नहीं चाहिए, ज्ञान ही साधन है ऐसा यहाँ पर सिद्ध करते हैं। ये 236 नंबर का विचनामृत हुआ, यहाँ तक रखते हैं।